نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبائی امراض سے بچنے کے لیے 10 نصیحتیں. اس میں سے ہم ابھی تک 4 نصیحتیں سن بھی چکے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش میں بھی ہیں، اور امید ہے کہ اب ساری عمر اس پہ عمل بھی کریں گے. سب سے پہلی نصیحت تھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا کا صبح و شام 3 بار اہتمام کرنا، انشاءاللہ ہر اچانک مصیبت تکلیف سے ہمیں بچائے گا. کیا کل سے آج تک یاد رہا؟ تو اگر کوئی پہلے پڑھتا تھا تو اب شعور سے پڑھا ہوگا. دوسری نصیحت تھی آیت کریمہ پڑھنے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی بغیر گنے بغیر مقدار مقرر کیے، بس اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے. تو جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری مصیبتوں اور غموں سے نکالے گا. تیسری نصیحت ہے کہ مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا بھی آنے والی مصیبتوں کو ہم سے دور کرتی ہے، دشمنوں کو ہم سے خوش رکھنے سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں انسان رہتا ہے. اور چوتھی نصیحتی کے گھر سے نکلتے وقت دعا کی پابندی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا جاتا ہے، کفایت کی جاتی ہے اور بچا لیا جاتا ہے، اور شیطان پھر اس سے دور ہٹتا ہے. آج ہم اگلی چیز سے شروع کریں گے، اور وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور وہ ہے صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی ون یمینی ون شمالی و من فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ، میں تجھ سے اپنی دنیا و آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین و دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت طلب کرتا ہوں. اے اللہ، میری شرم گاہ کی ستر پوشی فرما، مجھے خوف و خطرات سے محفوظ فرما، میری حفاظت فرما میرے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے. اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یقین کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کو بندے کی سب سے جو دعا پیاری لگتی ہے نا، وہ عافیت کی دعا ہے. اور الحمدللہ جب یہ وبا پھیلی ابھی یا جو بھی اس کا ذکر شروع ہوا، تو جو ہمارا ڈے 1 تھا اس دن میں نے اسی دعا کو لیبوریٹ کیا تھا. ہمارے پاس مستقل ایک لیکچر کی صورت میں یہ دعا موجود بھی ہے، وہاں اس کا ایک ایک لفظ پڑھا گیا تھا، عافیت اور اف کا فرق اور ربط بتایا گیا تھا، پھر عیبوں کو چھپانا کیا ہے، گھبراہٹوں کو امن کیا ہے. آپ اس سے فائدہ لیجئے، لیکن یہاں ہم جنرل بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ آپ اور میں صبح شام گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، کتنی گاڑیوں کے بیچ میں سے ہم بچتے ہیں نا. کون بچاتا؟ کسی لمحے کچھ ہو سکتا ہے نا. پچھلی گاڑی آپ سے ٹکرا سکتی ہے، اگلی گاڑی کے ساتھ آپ ٹکر مار سکتے ہیں، کسی وقت ہینڈ بریک کام کرنا چھوڑ سکتا ہے نا، کلچ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے، سٹیرنگ سٹک ہو جائے، کیا کریں گے؟ یہ عافیت ہے. آپ بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے والے تھے. آپ نے آج صبح یہ دعا مانگ لی ہوئی تھی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اور ہوا کہ گاڑی بالکل آپ کے گھر کے پاس آ کے خراب ہوئی. یہ عافیت تھی. کبھی کبھی ہمیں زندگی میں نقصان جب آتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو صبح میں یہ دعا مانگی تھی. سوچیے اگر آج آپ کی گاڑی کہیں خراب ہوئی تو آپ نے صبح یہ دعا مانگی تھی؟ ہاں، تو پھر کیوں خراب ہوئی؟ ایمان بنا لیجیے، عقیدہ ظاہر کیجیے اپنا कि अल्लाह ने मुझे इस दुआ के पढ़ने की वजह से ऐन हाईवे पे गाड़ी ख़राब होने और दूसरी कई गाड़ियों के साथ टकराने से बचा लिया। बात बात है, दुआओं की वजह से इंसान जिस तरह मुसीबतें टल जाती हैं ना, इसी तरह से बड़ी तकलीफें छोटी होके दिखती हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है, और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने गैब के पर्दे में बहुत कुछ छुपाया हुआ है। अगर हर वक्त हमें ये पता लगने लग जाए कि अभी क्या होने वाला था, क्या हो गया, किससे बच गए, यकीन करें आप पसंदीदा से पसंदीदा खाने को एंजॉय ना कर सके। पहले ही अगली खबर तैयार है कि शाम को कहीं जाके गाड़ी टकरानी है, घर से निकलते हुए पता चल रहा है कि ओहो रास्ते में कोई गड़बड़ हो जानी है, कुछ ये होना है वो होना है। नुकसान क्या होता है कि लज्जत ख़त्म होती है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को पर्दा गैब में रख के हमें बचाया हुआ है। फिर आप देखिए, यहाँ दुनिया और आखिरत की आफियत की भी बात है, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। ज़रा सा सोचिए, एक वबा आई, एक आफत हम पर टूटी, हमारी दुनिया की ज़िंदगी रुक के रह गई ना। कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह का हुक्म है। बी पॉजिटिव, बी कंस्ट्रक्टिव, बी करजियस, इट्स ओके। ज़रा सोचिए, आखिरत की मुश्किलात से कौन बचाएगा। उस दिन तो फिर वो हालात होंगे कि अम्मा यतसालून अनिन नबा इल अजीम, वो भी तो एक बहुत बड़ी खबर होगी ना। नबा अहम खबर को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ नबी भी है। अंबिया कराम बड़ी बड़ी खबरें देने वाले थे, तो क्यामत के दिन के धमाके और वहाँ की अफरा तफरियाँ और वहाँ नफसी नफसी, आज भी तो नफसी नफसी है ना हमें। और आज यही तो कहा जा रहा है कि अपनी फिक्र करो, दूसरों को छोड़ो, सर्व योर सेल्फ बिफोर सर्विंग अदर्स। तो कभी सोचिए, आप और मैं क्यामत के दिन की उस गर्मी सर्दी, उस दिन के फितने, उस दिन की चीज़ों के लिए तैयार हैं। हदीस में आता है क्यामत के दिन सिर्फ अम्बिया कराम बोल रहे होंगे। एक रिवायत में आता है कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, ए अल्लाह सलामत रखना, ए अल्लाह सलामत रखना। और एक जगह आता है कि कहेंगे नफसी नफसी, और एक जगह ये भी आता है बिल्कुल खामोश, इल्ला खमसा, हल्की सी चुरचुराहट, हल्की सी आवाज़ भी नहीं होगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला कभी कभी हमें तन्हा कर देता है, इसलिए कि हमें अपना रब याद आए। दुनिया की चीज़ों में जब आफियत मतलूब है, तो फिर आखिरत में तो इसकी बहुत ज़रूरत थी ना, और पड़ेगी भी। फिर आप देखिए कि अल्लाह से साथ ही मांग लें। आजकल बहुत प्यारे दिन हैं खुद को भी और दूसरों को भी अल्लाह से जोड़ने के। देखिए, बहसों को छोड़ दीजिए, बहुत खबरें सुननी छोड़ दीजिए, बस कह लीजिए अल्लाह ने आपकी मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर अभी रखा है सामने, जिसने मुझे आपको वो बहुत कुछ सिखा दिया जो हो सकता है अभी हमारे उस्ताद हमें दो दो साल और पढ़ा के भी ना सिखाते। वालदैन बच्चों को वो बातें ना सिखा पाते जो हालात के थपेड़े उनको सिखा जाएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे थपेड़े लाजमी होते हैं। लेकिन अगर हम इनसे सीखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो फिर आप देखिए कि अफ़वल आफिया, मुआफ़ियाँ भी दे दे। अल्लाह, ये जो तुमने हम पे हमारे गुनाहों की वजह से कोई वबा मुसल्लत की है ना, अब इसको माफ़ कर दे, जाने दे, और वल आफिया फिर आगे आफियत दे दे। यानी गैर महसूस तरीके से आप आने वाली मुसीबतों से अपने आप को रोक रहे होते हैं, और जो पीछे हो चुका उसको मट्टी डालो, दरगुजर करो, जाने दो वाली कैफियत में रखते हैं। और आप देखिए, फी दीनी व दुनिया या, आप नोट करें, अगर आप इस दुआ पर आए नजरें तुम्हें ना, तो ऊपर है दुनिया वाला आखिरा, दिख रहा है, बिल्कुल उसके नीचे लेके आए ना तो फी दीनी व दुनिया या, यानी दुनिया और आखिरत का एक पेयर है और एक दीन और दुनिया का पेयर है। क्या पता चला कि आप और मैं दीन के नाम पर दुनिया के तकाजे छोड़ नहीं सकते। हम आखिरत की बातें करने वाले इस दुनिया की बातों से बेनियाज नहीं रह सकते। ये दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है कि एक दीनदारों का पोर्शन है और एक दुनियादारों का। एक कुरान पढ़ने वाले हैं वो लोगों को एक और सोच दे रहे हैं, और एक दुनिया वाले हैं और सोच दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, द बेस्ट कॉम्बिनेशन किसी भी सोसाइटी में लोगों का क्या होता है, हर बंदा दीन को भी समझे, दुनिया को भी समझे, दुनिया की भी फिक्रें रखे और आखिरत की भी फिक्रें रखे। और फिर तीसरा पेयर देखिए इसमें क्या, ज़रा आगे ही आ रहा है, अहली व माली। दो हस्तियां इंसान को बड़ी प्यारी होती हैं, एक अहल, अहल क्या है, जिन करीब है। देखे अगर अहल है ना, जैसे यहाँ है, हमारे यहाँ अहल कह देते हैं, पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है हमारा, आ और ई के बीच में ए ले आते हैं। बहरहाल अहलो याल में कौन है? करीबी घर वाले, शौहर, बीवी, बच्चे, माँ बाप। अच्छा, अगर इसको आल कर दें, आल के ऊपर मत लगा दें, आल बड़ी होती है, जैसे आले इब्राहिम, आले मोहम्मद, आले फिरौन, मशहूर लोगों की आल, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी, कुछ भी। लेकिन अहल का लफ्ज, जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे अहल हैं, मैं इसका अहल हूँ, अहलुल जन्ना, तो ये सारे लफ्ज साथ जोड़कर देखिए, जितना इंसान को अपने घर वालों से प्यार होता है ना, उतना ही वह माली माल से भी होता है। आम हालात में बंदा कभी नहीं चाहता कि ये दोनों मुतासिर हों। अगर आप इन दो लफ्ज़ों पे नज़रें जमाएंगे ना, फिर बात समझ आएगी। आम हालात में माल कमाने के लिए कभी कभी हम अपने अहल को, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, घर में रहने वाले, उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे बीवी को कहते हैं अहलिया, हाँ, बच्चों को कहते हैं अयाल। तो बीवी बच्चों के लिए एक इकट्ठा लफ्ज बोला जाता है हमारे उर्दू कल्चर में, बीमा अहलो अयाल। शादी कार्ड्स पे लिखा होता था कभी, अभी भी लिखते होंगे कुछ लोग, हाँ। इंग्लिश में आप कहते हैं तो फैमिली। इसमें एक बड़ी प्यारी बात इन दिनों में सीखी है, कल रात से एक लफ्ज दिमाग में आ रहा है, घर घर घर। तो शाम को तसव्वुर में आ रहा था कि घर क्या होता है ना, तो जहन में आ रहा था कि घर वो जहाँ रात को जाने को दिल करे। आप सारा दिन बाहर रहें, रात को दिल करता घर चले, और घर वो जिधर खिंच पड़े, घर का माहौल, घर में रहने वाले आपस में इतने खुश, इतने ट्रस्टवर्दी हों कि सारा दिन जिधर मर्जी भागो, आप शाम के बाद मैंने बाहर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। और अमूमी तौर पे तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े ही बदबख्त होते हैं कि उनके घरों में सुकून नहीं है, सामान भरे पड़े हैं, घर वाले नहीं हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ घर में नहीं है, बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं तो मियाँ साहब काम पे हैं, वीकेंड्स पे मेहमानों को इनवाइट किया हुआ है लेकिन जो साहब है उनको कहीं मीटिंग में जाना पड़ा। आजकल अपने घरों को एंजॉय करें। मैं ये सोच रही थी कि ऐसे ही सोचने की चूंकि आदत है ना, तो कल एंजॉय कर रही थी बल्कि, कि अगर ये जो आजकल के सरकमस्टांसिस हैं यही जिंदगी होती, मिसाल है, बस हुक्म ही होता, दिमागों में भी ना आता कभी बाहर जाना है, किसी को बुलाना है, तो क्या कुछ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता, सारी मेहमान नवाजी ख़त्म, अच्छे कपड़े ख़त्म जो बाहर जाते पहनते, घर में वही आपने पुराने छोटे पुराने जो कपड़े पहनने वही पहनने। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आउटडोर क्लोदिंग सब ख़त्म, फिर आप देखिए कि जो इख्तलात है या मिलना जुलना इस्लाम में पसंदीदा वो ख़त्म, और हमारी तो कितनी जिम्मेदारियाँ ही ख़त्म। और मैं इसको जोड़ रही थी वकर नफ़ी बुयूती कुन से, औरतों को जो कहा गया कि तुम जो घरों में बैठी रहो, तो आज सबको बैठना पड़ा। इंजॉय कीजिए अपने घरों का माहौल इन दिनों में, अजुर्दा परेशान को ना बनाइए। एज अ हस्बैंड बीवी को टाइम दीजिए, एज अ वाइफ हस्बैंड को टाइम दीजिए, एज अ पेरेंट बच्चों को टाइम दीजिए। बूढ़े बैठे हैं आपके घरों में, क्या पता उनकी वजह से आप बचे हुए हैं, उनको वक्त दीजिए। दादी दादा बैठे हुए हैं, उनको वक्त दीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। यानी ये वक्त अपने घरों को जन्नत बनाने का है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप अपने घरों में 5 वक्त नमाज पढ़िए, कौन रोकता है आपको? किसी ने नहीं रोका आपको कभी। तो याद रखिए ये दौर, ये जो दिन हमें बाद में याद आएंगे ना, तो कुछ बच्चों के लिए मेमोरियल बन चुके होंगे। मम्मी इज ऑलवेज एट होम, बाबा इज होम, अम्मी अबू दोनों घर में थे। बच्चों को वक्त दीजिए, खेलिए, बातें कीजिए, उनको सिखाइए भी इन चीज़ों से, लेकिन खौफ सजा ना कीजिए। और ये ना सोचते रहें कि खाना ख़त्म हो गया तो क्या होगा, मुझे तो डर जाए कि घरों में जितना खाना भर गया जरासीम ना आ जाए खाने के पे। खाना अंदर फ्रिजों में रख दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन इंसानों को वक्त दें। अब बात मैंने जो छेड़ी थी ना, आप तो दूर चले गए लेकिन मेरा दिमाग उधर ही है। आम तौर पे हम माल के लिए अहल को पीछे करते हैं, ये जुमला पीछे से जोड़ लें। यहाँ देखिए क्या, जब दुआ मांगने लगे तो पहले किसके लिए मांग रहे हैं? अलफ़ वला फ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। समझ आइए बात, आफियत पहले घर वालों की मांगनी है, माल मिल जाएगा तो मिल जाएगा। क्या करना है माल को अगर बच्चे ना रहे? क्या करना है बच्चों की पढ़ाई को अपने? अगर आपका कोई बच्चा डिप्रेस है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, आपको मारो गोली, मैंने नहीं अपने बच्चे को पढ़ाना, मुझे उसकी जान प्यारी है, तो मज़ा आएगा ना। आप कहते हैं हाय बच्चे स्कूलों से फारिग हो गए, हाय बच्चों के इम्तिहान, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हमने अपने बच्चों के कोई इम्तिहानों के लिए थोड़ी उनको पाल रहे हैं, हमें तो उनकी जान चाहिए। तो मोमिन की जान बड़ी प्यारी है, तो घर वालों को माल से ज़्यादा अहमियत दीजिए, ठीक है? चलिए, अल्लाह मस्तुर औराती, अल्लाह हमारे ऐप छुपा ले, हमारे पर्दे रख ले। यकीन करें घर में बैठे रहें बड़े पर्दे छुप जाते हैं। जब तक हम बोलते नहीं है ना, हमारा असल नहीं खुलता। इसी तरह जब तक हम एक्सपोज नहीं होते, हमारी बहुत सारी आदतें, बहुत सारी बातें छुप जाती हैं। बाहर की दुनिया में बहुत इंट्रेक्शन होता है, उस वक्त इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। तो लिहाजा इस चीज़ की दुआ करते रहा करें कि अल्लाह, जैसे तूने मुझे घर में बिठाया, अब तू मेरे ऐप भी छुपा दे। और ख़ास तौर पे देखिए, वामिन रवाती, रवा, ये सब लफ्ज़ों की वजाहत मैंने उस लेक्चर में की हुई है, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। यानी मेरी घबराहटों का मंद है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ होता है खौफ के लिए, खौफ भी है, हुज़न भी एक किस्म का खौफ होता है, खशियत भी होती है। ये जो लफ्ज़ है ना, ज़रा सोचे जो कुरान के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, रौ का लफ्ज़ कुरान में आया है। हज़रत, मैं चुप इसलिए हूँ कि आप सोचें, किसी नबी के नाम के साथ आया है, सुभानअल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रौ, यानी एक ऐसा खौफ होता है जिसमें घबराहट हो। ये सारे लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप कहते हैं वा आमिन रऊ आती, तो ये रऊ आ जो है ना, ये रौ उन्हीं है कि मेरे अंदर जो एक घबराहट है, पल्पेशन है, कुछ लोगों को होती है, हर वक्त ही बुखलाए रहना, क्या हुआ, क्या, कुछ नहीं बाबा, इट्स ओके, आ फाइन, इट्स ओके, रिलैक्स्ड, टेक अ डीप ब्रेथ। तो अगर आप माँ हैं ना, तो अपने अंदर से ये आदत निकाल दें। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ, अल्लाह ही सबको मुख्तलिफ तरह से पैदा करता है, एग्जैक्टली जो माँ और बाप की कैफियत थी ना, आज उनके बच्चों के बच्चों में भी ट्रांसमिट हो गई है। मशहूर है वो खानदान घबराहटों वाला, हर वक्त उनको घबराहट होती है, जी जी हो गए, है ऐसा, ऐसी कैफियत पहले बीवी में थी, शायद मियाँ बीवी इकट्ठी कैसे हुई है मुझे नहीं पता, मेरे लिए बीवी ने मियाँ पे असर डाल दिया होगा या कुछ ऐसा गड़बड़, एक घर से तो दोनों थे भी नहीं है। अब वो बेटियों में, अब वो बेटी गई कहीं और, अब वो बेटी के बच्चे, वो बच्चों में आ गई, अब बेटा जो है वो ब्याह के लाया किसी और की बेटी को, तो कुछ ना कुछ जरासीम इधर से उधर चले गए। सुकून, पीस, रिलैक्स्ड, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और कल वो जुमला भी याद आ रहा था जो बड़ी दफ़ा हमने तफसीर में लिया है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे बहुत कुछ गुजर गया। लोग आपको आगे आने वाले हालात से डराते हैं, आप पीछे गुजरे हुए हालात को देखा करें, ये भी तो गुजर गया ना दिन, ये भी तो होगा ना। जैसे आजकल लोग इटली के हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान में रहने वालों को ट्रेन कर रहे हैं, बेसिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता और खेल और जोकी बना लिया जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि आने वाले मौहूम खतरों से, एक तो होते अगले बंदे को टीच किया जाए, अच्छी बात है, बहुत नाइस सेट, अच्छी टिप्स, लेकिन अब ये लाशें जमा हो रही, इकट्ठे दफना रेड, ये नहीं करना चाहिए, इससे उम्मत का मोरल डाउन होता है। फिर तो अल्लाह के नबी जंगों में इन्हें लेके जाते हैं कि जी मर भी जाओगे, अब 70 शहीद हो गए गज़वे उहद में, अब मुझे बताइए 70 शोहदा का गम मनाते रहते तो अगले ही दिन हमरा उल असद के लिए कैसे निकलते। तो खौफ और गम हमारी एबिलिटीज़ को ज़ाया करता है। और आज के हालात के लिए मैं आपको एक टिप दे दूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन खौफ में हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, घबराहट होती। आप देखें, एक बड़ी मारूफ बात है तो बड़ी पर्सनल, लेकिन सभी किसी न किसी मौके पे इससे गुजरे होंगे, एकदम गम की खबर सुन के पेट में मरोड़ उठता है, उठता है, ये क्यों उठता है, एग्जैक्टली उस गम की खबर का हमारे स्टमक पे असर होता है। लोगों को डायरिया शुरू होता है, पेट में बाल उठेंगे, फौरन उठेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, किसी को, बहुत बच्चे को धमका दे, एकदम यूरिनेट कर देगा। तो दैट मीन खौफ हम जितना लोगों को देंगे ना, उनका इम्यून सिस्टम खराब होगा। रिलैक्स्ड, स्माइल, कोई बात नहीं, इतनी खुशखबरियां भी तो है ना, इहदल हुस्ना यहीन भी तो है ना, और आज अबुल अमरुल मोमिन भी तो है ना। हजरत अबू हुरैरा अपने लिए कहा करते थे कि अबू हुरैरा अगर जंग से बच के आ गया तो लोग कहेंगे वो अबू हुरैरा फिर रहे सड़क गलियों में, जिंदा शहीद को देख लो, और अगर चला गया तो लोग कहेंगे कि अबू हुरैरा शहीद हो गया। इल्मी शख्सियत है ना, तो उनको ये शहादत और जंगों की लड़ाइयाँ वगैरह उससे कुछ ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, तो एक मौके पे इस किस्म की बात वो अपने लिए कहते हैं। तो बी पॉजिटिव, ये जो बात है ना इस लफ्ज़ में इस वक्त आ रही है, जो आपकी मेरी इसलाह का इंशाल्लाह जरिया बनेगी, कि अल्लाह मेरी घबराहटों को अमन दे और वक्फ फजनी में बहनी यदैया, अल्लाह मेरी आगे से भी हिफाजत कर। मतलब यह है कि अगर मैं यूके में हूँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, तो अब जो आने वाले दिनों में इधर कोई खराबियाँ आने वाली है तो मुझे उससे बचा ले, वमिन खल्फी, और कोई पीछे से अगर कोई बची खुची चीज़ है तो उससे बचा, यमीनी वन शिमाली वमिन फौकी, यानी मोमिन एक जैकेट पहन लेता है प्रोटेक्शन की। और सारे मीन्स लेने के साथ साथ जब आप अल्लाह से इस रहमत की दुआएं करते हैं ना, तो आखिर में फिर आप कहते हैं वाउज़ु बिअज़मतिका, اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں. اس کو میں نے وہاں بھی بہت کھول کے بیان کیا, آپ سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا؟ ان اغتال من تحتی, کہ میں اچک لیا جاؤں, پکڑ لیا جاؤں نیچے سے, یعنی ایسا نہ ہو کہ زمین ہی پھٹے اور میں اس میں گھس جاؤں. تو بہترین دعا ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. یہ صرف وبا کے دنوں کی نہیں, یہ ہر دن صبح اور شام کی دعاؤں کا حصہ ہے. اب اس کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ, اور پڑھیے, آپ اس نیت سے بھی پڑھیے یاد کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ان حالات میں بھی اس کو پڑھتے رہیے.
اللهم انی اسألک العافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألک العفو والعافية فی دینی ودنیای واهلی ومالی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
تو جب شعور کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو بھی کھولتے ہیں, ٹھیک ہے؟